October 22nd, 2006, evening class, Kartik.
नमो महादन्याय कृष्णाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नन्दे गौरगुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदानन्द कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय अङ्गचामरे सदा मन्दिरोतिसङ्गृदनसङ्गपट्टम्बरवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं राधां परमारात्रतम पितलीला पवित्र विष्णुता अष्टोत्तर श्री श्री सुमन भगवान भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के चरण और कमलों में अनंत कोटि सत्ता पुष्पांजलि चंद्र प्रणाम पूर्वक और मेरे शिक्षा गुरु नित्यलीला प्रवेशों विष्णुपाल स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में भी अनंत कोटि दंडवत पुष्पांजलि प्रदान करता आज श्री गुरु गौरांग गंधर्व का अधिकारी विनोद बिहारी जी की कृपा से आज तक हम लोगों की ब्रजमंडल परिक्रमा निर्विघ्न रूप में और अच्छी तरह से संपादित हुई, विशेष करकर दीपावली और अन्नकूट का महोत्सव भी बड़े धूमधाम गो पूजा ब्राह्मण वैष्णव पूजा गुरु पूजा इत्यादि के माध्यम से असंपन्न हुआ। आज हमने बताया आज ही के दिन यशोदा जी ने कृष्ण को प्रेम रज्जु से बांधा था और आज ही के दिन कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को धारण किया था। विशेष करके कृष्ण लीला के 4,500 वर्ष बीत जाने के बाद में माधवेंद्र गोपाल जी ने फिर से श्री नाथ जी का प्राकट्य कराया। वे हमारे संप्रदाय के भक्ति कल्प तरु के अंकुर कहे जाते हैं। उन्हीं से प्रेमा भक्ति लोगों के संप्रदाय में आरंभ हुई, जिसको पीछे से सप्ताओं का रायण माननीय चैतन्य महाप्रभु ने इसको प्रतिपादन करके बढ़ाया। आज माधवेंद्र पुरीपाल जी के संबंध में कुछ महाराज कुछ संक्षेप में 15 मिनट का समय सभी को दें, इसे सभी बोल सकते हैं। अंदर
ओ या रसला गया च असंख्य कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित पूजनीय सन्यासी वृंद, समस्त वैष्णव जन, समस्त सज्जनों, माताएं बहनों, सभी को मेरा प्रणाम निवेदन। आज बड़ी खुशी की बात है क्योंकि आज बड़े सुचारू ढंग से और गुरु जी के सान्निध्य में ही हम सभी लोग श्री अन्नकूट महामहोत्सव में शामिल होने के लिए सौभाग्य प्राप्त किए हैं। यह अन्नकूट महोत्सव केवल आज नहीं, भगवान कृष्ण ने जैसे नंद बाबा से कह करके गिरिराज जी की पूजा कराई, उनका मान वर्धन किया, इसी तरह से ब्रज में तो उस समय से ही चलता रहा, परंतु परवर्ती काल में श्री माधवेंद्र पुरीपाल जी, जबकि कृष्ण के अंतर्धान होने के पश्चात एक प्रकार से ब्रज भूमि लुप्त प्राय, जबकि बजनाव जी आए, सुरसेन देश के राजा बने, तब उन्होंने ब्रजभूमि को पुनः विकास किया, गांव से शहरों से लीलाओं से संबंधित करके सभी नामों से जोड़ दिया, बड़े बड़े मंदिर बनवाए, विग्रह की स्थापना की और कुंडों का निर्माण किया, इसी प्रकार से ब्रजभूमि को पुनः विकसित किया था। कालक्रम से बहुत समय अतिवाहित होने के पश्चात यवनों के अत्याचार के कारण प्राय करके लुप्त तो होता सा चला गया, जैसे कि ब्रज के गोपाल श्रीनाथ जी जो गोपाल जी हैं, जो वे स्वयं कहते हैं वज्रेर स्थापित आमी यहाँ अधिकारी, गिरिराज गोवर्धन में वे बजनाव के द्वारा स्थापित और यहाँ के अधिकारी अंदर गांव में जतिपुरा में, जो कि श्री माधवेंद्र पुरीपाल जी बंगाल से ही आए, इनका जन्म स्थान प्राय करके बंगाल ही लगता है, जो कि दक्षिण में जाकर के लक्ष्मीपति तीर्थ से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो उनसे उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और संन्यासी बन करके अकिंचन वृत्ति के साथ, जो कि अजाचित वृत्ति, कभी किसी से कुछ भी मांग के खाते नहीं थे, किसी से कुछ मांगते नहीं, बोलते नहीं, कभी कुछ मिल जाए भगवत इच्छा से, आकाश वृत्ति से जो कुछ भी मिले उसी से ही अपना जीवन निर्वाह करना, अपना खाना पीना, इस प्रकार निष्किंचन वृत्ति को अवलंबन करने वाले श्री माधवेंद्र पुरीपाल जी, जो प्रेम भक्ति के अंकुर हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु जी से कुछ पूर्ववर्ती, माधवेंद्र पुरीपाल जी यहाँ आए ब्रज में और आज जबकि उन्होंने गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हुए गोविंद कुंड में आकर के बैठे, शाम का समय एक गोपाल आकर के, ब्रज बालक आकर के बोले, बाबा ब्रज में, हमारे ब्रज में यहाँ कोई भूखा प्यासा नहीं रहता है, कोई न कोई कुछ न कुछ मांग के खा पी लेते हैं, तो आपने क्यों नहीं मांगा और क्यों नहीं खाया, भूखे प्यासे कैसे बैठे हैं, मेरी भैया ने ये दूध भेज दिया, तो ये दूध पी लेना, लोटा रख देना, मेरा बहुत सारा काम है, अभी जा रहा हूँ, पीछे ले जाऊंगा। इतना कह करके दूध का लोटा दे करके तो चले गए, पर माधवेंद्र पुरीपाल जी का मान, जीवन भर जिनका मान कभी विचलित नहीं हुआ और किसी में भी आकर्षित नहीं हुआ, परंतु उस बालक के मधुर वचनों ने उनको आकर्षित कर लिया, खोए रहे। इसी तरह से दोस्त और पीलिया उन्हें चिंता करते करते उसी समय झपकी भी आ गई। चंद्रा आते ही पेड़ के नीचे वही सो गए और सोते ही देखा कि वही बालक आए। आकर के बोले कि माधवपुरी तवार लगी बहुदीन करी प्रतीक्षा कभी ऐसी माधव बोले परिवे सेवा। हे माधवपुरी तुम्हारे लिए मैं बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा, कब माधव आएगा और मेरी सेवा करेगा। जवनों के अत्याचार के कारण पुजारियों ने मुझको यहाँ छिपा दिया और यहाँ छिपाने से मैं जमीन के अंदर चला गया। कितने पेड़ पौधे जंगल उग गया, सर्दी गर्मी और शीत वर्षा सब कुछ सहन करता रहता हूँ। इस प्रकार भूखा प्यासा ऐसे पड़ा हुआ हो तो मुझे उठा उठा करके मेरी सेवा। इस प्रकार जैसे ही आज्ञा हुई और उन्होंने रात को स्वप्न में ही सारा के सारा सब दिखा दिया, कौन से स्थान पर कहाँ पर है। सुबह होते ही उन्होंने गांव वालों को बुलाया, बुला करके वहां के जंगल झाड़ी साफ करके धीरे धीरे मिट्टी खोद करके गोपाल जी को प्रकट कर ली। सभी जय जयकार कहने लगे। गोपाल जी प्रकट हुए, बड़े आनंद बड़ी खुशी की बात। गोविंद कुंड के पानी से पैर धोधा करके कीचड़ मिट्टी हटाया, साफ किया। इसके बाद जितने भी ब्रजवासी हैं सभी लोग अपने घर से दूध दही मक्खन और खाने पीने का जो कुछ भी बना हुआ सामान मिला सब कुछ लाए। ला करके पहले ही तो अभिषेक किया गिरिराज जी पर। अभिषेक करते हुए फिर अन्नकूट 56 भोग लगा दिए। सभी भोग लगाए तो गोपाल जी साक्षात रूप में प्रकट हो करके स्वयं ही भोजन कर रहे हैं, जबकि श्री माधवेंद्र कुलपाल जी स्वयं यह अनुभव करते हैं। और प्रतिदिन जो जहाँ से सुनते हैं प्रतिदिन अन्नकूट उत्सव होता है। मथुरा लोग सब बड़े बड़े धनी मानी सभी लोग आते हैं। बोले गोपाल जी प्रकट हुए, चलो अन्नकूट करना है। सभी की ओर से एक बरस तक अन्नकूट उत्सव होता चला। इसके पश्चात श्री माधवेंद्र कुलपाल जी कुछ ब्राह्मण शिष्यों को जो की मंत्र इत्यादि दे करके उनको पूजा में लगाया। और गोपाल जी बोले कि मुझे गर्मी लग रही है, चंदन थोड़ा सा लगाए तो मेरा शरीर शीतल और ठंडा हो, बहुत गर्मी लग रहा है। तो उस समय माधवेंद्र कुलपाल जी उन शिष्यों को वहाँ सेवा पूजा में नियुक्त करके ले गए। बंगाल होते हुए बालेश्वर जिला हो करके जगन्नाथपुरी। रास्ते में जाते समय रेगुना में जो कि गोपीनाथ जी हैं, भगवान श्री राम ने स्वयं ही मूर्ति को प्रकट करा करके कृष्ण स्वरूप को दिख रहा था सीता जी को। वही स्वरूप जो कि स्वयं ही श्री राम ने प्रकट किया था, वही मूर्ति जो गोपीनाथ जी काफी पुराने समय से सेवा पूजा चलती आ रही थी, वहाँ की सेवा पूजा की कुछ विशेष व्यवस्था है। वहाँ एक विशेष प्रकार का खीर भोग लगता है। उन्होंने पुजारियों से सारा पता लगाया, जानकारी हुई, पर मनी मन इच्छा बनाए रखी कि वह खीर कैसे बनता है एक बार यदि इसका अनुभव करे तब वैसे ही बना करके गोपाल जी को भोग लगा। तो मन में इच्छा रही पर बोले नहीं। जैसे ही वे बाहर निकल करके बाजार में जा करके बैठ गए, रात का समय दुकानें बंद हैं, बाहर में बैठे हुए हैं, बैठे बैठे वहां लेट गए। और रात को भगवान को जब भोग लगा गोपीनाथ जी को, तो गोपीनाथ जी ने 12 बर्तनों में से एक बर्तन खीर स्वयं उठा करके पीछे की तरफ रख लिया। रख करके रात को जब पुजारी सोए उस समय गोपीनाथ जी जा करके पुजारी से बोले कि पुजारी जी उठो उठो, मेरा एक भक्त माधवपुरी नाम बाजार में बैठे हुए, मैंने उनके लिए एक बर्तन खीर छिपा के रखा, मेरे पीछे की तरफ है, तुम उसे लेकर के जाओ और उनको दे करके आओ। जैसे भगवान की आज्ञा हुई उस समय पुजारी जी चल दिए, जाकर के देखा सचमुच खीर का बर्तन, उसे ले करके माधवपुरी बोलते हुए चले। बाजार में मिल गए अकेले श्री माधवेंद्र कुलपाल जी, उनके हाथ में खीर दे करके साष्टांग प्रणाम किया। धन्य है महान, आप कैसे कितने बड़े महान पुरुष हैं, आपकी सेवा हम नहीं कर पाए, परंतु भगवान स्वयं आज हमें भी जगाया, दर्शन दिया और बोले कि जाओ ये खीर मैंने छिपा के रखा, उठा के और इस माधवेंद्रपुरी पाद जी को दिया। आपके लिए भगवान ने खीर चुराया और ऐसे भक्त भगवान आप धन्य है महान गुरु, आपके चरणों में सत सत प्रणाम, साष्टांग हो करके गिर पड़े, उनकी कृपा लेकर के वे पुजारी तो लौट के आए। माधवेंद्रपुरी पाद जी ने उनसे ग्रहण किया, खीर खाया, बर्तन को कपड़े में बांधा और आधी रात वहां से चले। प्रतिष्ठा भले पूरी जाय पलाइया, प्रतिष्ठा के डर से माधवेंद्रपुर पाजी उस स्थान को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, परंतु प्रतिष्ठा कहाँ छोड़ती, हवा की तरह दौड़ रही है प्रतिष्ठा, पीछे पीछे सभी को हल्ला मच गया कि अरे ऐसे महान भक्त जिनके लिए भगवान ने खीर चुराया और उससे खीर चुरा गोपीनाथ नाम पर गया, ऐसे महान पुरुष आए हैं। सभी लोग उनकी कृपा भिक्षा मांगने लगे। इस प्रकार वे जब जगन्नाथपुरी गए तो उनका बड़ा स्वागत हुआ और बड़े अभिनंदन किया। तो उस समय उन्होंने कहा ऐसी भगवान की आज्ञा है, हमें कुछ चंदन चाहिए। तो वहां के पंडित पुजारियों ने काफी सारा चंदन दिया और कोई लोग दे करके ले आए। जबकि गोपीनाथ जी ने आए तब गोपीनाथ गोपाल जी ने उन्हें दर्शन दिया, बोले कि यहीं पर आप चंदन लगाए तो हमें मिल जाएगा, इस समय गर्मी का समय है, ये उपयुक्त समय आप यहीं लगाए। तब से एक महीने का श्री गोपीनाथ जी को माधवेंद्रपुर पाद जी ने चंदन लगाया, चंदन की सेवा हुई। इस प्रकार श्री माधवेंद्रपुर पाद जो की दिवारात्र राधा कृष्ण के विरह विप्रलंब मय प्रेम में डूबे रहते हैं, जो कि श्री माधवेंद्रपुर पाद जी एक श्लोक का कीर्तन करते थे, आई दिन दया कविराज गोस्वामी पाठ थे। इस श्लोक पर व्याख्या देते हुए वर्णन करते हुए कविराज गोस्वामी पाठ ने कहा, संसार में केवल तीन ही व्यक्ति हुए जो कि इस श्लोक के मर्म को जानने वाले, चौथे व्यक्ति आज तक दुनिया में नहीं। इस प्रकार के वचन लिख दिया कविराज गोस्वामी पाठ ने, जहाँ इतने बड़े बड़े महान और गोस्वामी लोग सभी बैठे और फिर भी ऐसे लिख रहे हैं। ये श्लोक राधा जी के वचनामृत जो कि उद्गार है। विरह में भी प्रलंब में जब कृष्ण द्वारका में माथुर विरह कातरा वृषभन नंदिनी राधा रानी दिव्य उन्माद में वृंदावन के किसी निभृत कानन में एकांत में बैठी हुई कृष्ण के विरह में अधिक उस समय कोई भी पास में नहीं। ऐसे समय में कृष्ण चिंता में विभोर हो करके राधा जी विकल हो करके रोती है, ऐ दिन दया त्रणा, हे दिनों के प्रति दया करने वाले, हे नाथ हम जैसे और दिन ही कौन होगा। इस प्रकार राधा जी अतिशय दीनहीन भाव से विरह में कातर हो करके रोती है। हे मथुरा नाम कभी भावांतर होने पर उस समय राधा जी कहती है कि हे मथुरा नाम, यदि वृंदावन नाथ होते तो अवश्य आप लौट के आते, अब तो आप मथुरा नाथ है, मैं किस प्रकार कौन से दावी करूं, कौन सा दावा करूं, कोई अधिकार नहीं रहा, अब तो कोई भी अधिकार नहीं, क्या करूं। हे मथुरा राम कदा वो लोग कैसे, क्या कभी जीवन में, इस जीवन में कभी भी किसी क्षण अभी दर्शन मिलेगा। हृदयाम तदालोक तथा हे दैत हे प्रिय, जो ऊपर से प्रिय बनने वाले और अंदर से चक्र चलाने वाले, हे दैत हे प्रिय किम करम अहम, इस समय मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई, अब मैं क्या करूं, इस प्रकार मूर्छित हो जाए। ऐसे समय में गीत गोविंद